ओम शांति। आज की मुरली जिसको याद हो सुनाओ। बाबा को अगर हम अपनी कमियां सुनाएंगे तो बाबा क्या करेगा? करंट देगा, सकास देगा। किस लिए? कि ये कमियां इनकी निकल जाएं। बाबा को रहम भी रहता है, प्यार भी रहता है। तीर किसका लगेगा सेवाओं में? ये तो सीधी सी बात है, रोज का खेल है। जो योगयुक्त होंगे, कमियां कैसे निकलेंगी? देखो, ये जिसने कैच कर लिया हो वो बुद्धिमान। आज की मुरली में था, जिसने ये महावाक्य कैच किया हो वो बहुत बुद्धिमान माना जाएगा। कमियां कैसे निकलेंगी? नहीं, ये तो हो गई पहली बात। अपने को आत्मा बहुत समझेंगे और दूसरों को आत्मा देखने की प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हारी कमियां निकलती जाएंगी। आज की मुरली में है, तुम्हें संपूर्ण बनना है तो हमें अपनी कमियों को निकालना है। निकालना है या नहीं? कौन कौन सी, जरा इस पे विस्तार से चर्चा कर लें। कौन कौन सी कमियों को निकालना है? बोलो बोलो। बहुत कमियां हैं। एक तो पांचों विकार, सबसे बड़ी कमियां, कमियों का बीज, क्रिमिनलाइज, इस पे बाबा बहुत सुनाते हैं, बहुत बड़ी कमजोरी। अब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल कमजोरियां हैं जिनसे आत्मा बहुत कमजोर बनती है। कौन कौन सी है वो? पर चिंतन नहीं, देहाभिमान नहीं, ज्यादा बात करना, थोड़े बड़ी बड़ी बातें करना, जो खाली होते हैं ना अंदर में, और बड़ी बड़ी बातें करेंगे लोगों पर अपना प्रभाव डालने के लिए। और बोलो। अरे आगे आ जाओ बहनों, भीड़ में क्यों बैठ रही हो? और बोलो। हैं? व्यर्थ सोचने की आदत। और बोलो। कमी देखने की आदत। भाई लोग भी बोलेंगे, केवल सुनेंगे नहीं। कलश माताओं को है तो भाइयों को भी थोड़ा थोड़ा तो है। कौन सी कमियां हैं? बोलो। ज्यादा सोचने का संस्कार। सोचो, अभी छोटी बातों में परेशान होने की आदत। इन पे कम ध्यान रहता है लोगों का आजकल। बोलो। उदास, छोटी बात में उदास, अकेलापन। बातों को बढ़ाने का संस्कार बहुतों में होता है, जल्दी खत्म नहीं करते, पीछा ही नहीं छोड़ेंगे, लगे ही रहेंगे जब तक व्यक्ति बिल्कुल मर न जाए, उसके पीछे लगे रहेंगे, खत्म नहीं करते बातों को। अब बोलो, मैंने बहुत सारी बातें बता दी। अब माताएं बोलेंगी बीच वाली है नहीं कोई कमी, मूड ऑफ हो जाना और जेलसी करना। बोलते जाओ, बहुत अच्छा बोल रही माताएं। अभी कलश छलका है, छलकाओ जरा, छलकाओ छलकाओ। मोह बहुत रखना। मोह तो सब में होता है, पर किसी में थोड़ा कम होता है, पर किसी में टू मच होता है। नहीं, खैर भाइयों में भी होता है, माताओं को बदनाम न करो। हैं? अपनी कमजोरियों को बार बार याद करना, ये भी बड़ी कमजोरी है। साथ साथ बुद्धिमान और समझदार मनुष्य वो है जो अपनी कमजोरियों को जानता हो। जानना अलग चीज है, उनसे परेशान रहना दूसरी चीज है। जानना, जान के उनको निकालना, ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। और संगम युग पर जिसे अपनी कमजोरियां निकालने का दृढ़ संकल्प है वही आगे बढ़ता है। बहुत लोग आप इस संसार में देखेंगे, संगम योगी संसार में भी और बाहर तो बहुत, जिन्हें अपनी कमियों का पता नहीं है। उनकी अंगुली किसकी ओर रहती है? दूसरों की ओर। इनमें ये है, इनमें ये है, इनमें ये है। और जब हमारी दृष्टि दूसरों के अवगुणों पर जाती है तो हमें क्या नुकसान होता है? वो अवगुण हम में भी आने लगते हैं और चिंतन व्यर्थ चलता है। हमें केंद्र बनाना है एक चीज को, चिंतन। अगर हमारा चिंतन अच्छा चलता है तो हम कमजोरियों को जीतते जा रहे हैं। और अगर हमारा व्यर्थ बहुत है तो समझ लें कमजोरियां बढ़ती जा रही हैं, हमें घटानी है। बाबा ने बहुत गहरी गहरी धारणाएं भी सिखाई हैं, जिन पर तो अभी चर्चा कम होती है, पर जब हम छोटे थे यहाँ आए ये हॉल बना उन पे चर्चाएं ज्यादा थी मुरलियों में। न्यारापन और प्यारापन, लव और लो का बैलेंस, प्रेम भी रहे और अनासक्त वृत्ति भी रहे, वस्तुओं को यूज भी करें और निर्मोही भी रहें, बच्चों को प्यार भी दें और निर्मोही भी हो जाएं, दोनों बातें। ये दोनों अपोजिट चीजें हैं, पर दोनों जब जीवन में आती हैं तो हमारा जीवन बहुत महान हो जाता है। हमारी कुछ बड़ी बड़ी धारणाएं हैं जिन पर हमें बहुत ध्यान देना है। बड़ी धारणाएं हैं साक्षी भाव, ड्रामा के ज्ञान का अच्छा चिंतन, सर्वात्माओं से आत्मिक प्रेम, सबके लिए बहुत शुभ भावनाएं, सबके लिए अच्छा चिंतन, गुणग्राहक दृष्टि, संतुष्ट रहना, आज बाबा की मुरली में था। याद करो बाबा से हमें क्या क्या मिला है। बहुत कुछ मिला है, संतुष्ट रहना, सदा खुश रहना, सदा ईश्वरीय नशे में रहना, स्वमानधारी होना, ये हमारी बड़ी बड़ी धारणाएं हैं। तो हमें दोनों चीजों पे ध्यान देना है, अपनी कमियों को भी निकालते चलें, साथ साथ ये जो बड़ी धारणाएं हैं इन पे भी बहुत अटेंशन दें कि वो हमारे जीवन में आ रही हैं। तो कमियों को पहले हमें निकालना है, दूसरों के अवगुण देखना, निंदा करना, पर चिंतन में रहना, बातें इधर की उधर पहुंचाना, व्यर्थ बातों का विस्तार करना, नमक मिर्च मसाला मिला के चटपटी चटनी बना के दूसरों को परोसना, बातों के साथ यही होता है ना, बड़ा मजा आ जाता है। ये कुछ बात हुई और वो जब 100 लोगों तक पहुंचेगी तो असली बात तो खत्म ही हो जाएगी, चटपटी बातें और कुछ मिर्च मसाला मिलके आगे बढ़ जाती है, इससे नुकसान होता है बहुत। बाबा ने एक बार इसी हॉल में सुनाई मुरली में कि जिसकी बात होती है, कोई गलती किसी से हो गई मान लो, और तुम किसी को बताते हो, साथ में ये भी कह देते हो देखो किसी को बताना नहीं। अब जिसको हमने बताई, बाबा ने कहा जैसे तुम्हारा एक है वो गुड फ्रेंड, उसका भी कोई गुड फ्रेंड है, वो उसे बताएगा और उसको भी यही कहेगा किसी को बताना नहीं। और इस तरह बात फैलती फैलती वापस उस व्यक्ति के पास ही आ जाती है जिसकी वो बात है, और तब तक वो बात बहुत बड़ी बन गई होती है। उसकी गलती छोटी सी थी, बात विस्तार को पहुंच गई तो उसकी स्थिति बिगड़ती है। बाबा ने कहा ये नहीं करो। तो ये बातों को फैलाना बहुत अच्छा उदाहरण था एक। देखो लोग कहते हैं माताओं में समाने की शक्ति नहीं होती, मैं कहता हूं बहुत होती है। बताओ कैसे? उन दिनों बात की बाबा के पास चलती थी, माताओं में समाने की शक्ति नहीं होती। माताएं बताएं, तो बाबा ये सिखाते थे कि अपने बच्चों ने अगर कोई गलती कर दी हो तो माता पति को भी नहीं बताएगी, इतना समा लेती है। और पड़ोसी की लड़की ने गलती कर दी हो तो उसको फैलाना अपना परम कर्तव्य मानेगी, पत्रकार बन जाती है माता। तो समाने की शक्ति है या नहीं? है, केवल उसे कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ करें, बात ये है सारी। तो हम ध्यान दें, अगर हमारा परचिंतन बहुत चलता है तो हमें नुकसान क्या होता है? एक तो स्वचिंतन नहीं होगा, बिना मतलब परेशान रहेंगे, सोच सोच के दूसरों के बारे में, सोचने आए थे अपने लिए, सोच रहे हैं दूसरों के लिए, जन्म जन्म दूसरों के लिए ही तो सोचा, पर चिंतन ही किया है। अब समय है स्वचिंतन करने का, अपने से ऐसे बात करें, जन्म जन्म दूसरों को ही तो देखा है, अब आए हैं अपने को देखने के लिए। दूसरों की तरफ उंगली रखी है जन्म जन्म, अब ये उंगली अपनी तरफ करनी है, हमें अपने को बदलना है। देखो बाबा का कितना सुंदर महावाक्य है अव्यक्त मुरली में, विजय माला तो उनके गले में ही पड़ती है जो जो, बोलो, आता रहता है ये स्लोगन वरदानों में भी, स्लोगन में भी, जो स्व परिवर्तन करते हैं, जो अपने को बदलेंगे वो खुद आगे निकल जाएंगे। कईयों में आदत होती है, ये भी अच्छा नहीं कर रहे, ये भी अच्छा नहीं कर रहे, ये भी अच्छा नहीं कर रहे, तो हम भी ना करें। बाबा बड़ी हंसी का उदाहरण देते थे, हमारे यहाँ भाई लोग एक एक कमरे में पांच पांच सोते हैं, कभी चार सोते हैं, तो अमृत वेला उठने का समय आया, एक उठा, रजाई से मुंह निकाला बाहर, देखा बाकी चार सोए हुए हैं, मुंह ढक लिया, सो गए। बाबा ने भी ये उदाहरण दिया था, और ये करते ही हैं संगठन में लोग। तो दूसरों को देखकर अपना भी मिस कर देना, इससे हम बाहर निकल जाए। दूसरे सो रहे हैं, चार की दुकान बंद है, हमारी खुली है, तो ग्राहक हमारे पास ही आ जाएंगे ना सारे। तो हम क्यों न सोचे हमारी कमाई हो रही है, हम उठेंगे तो बहुत अच्छा बाबा से बातें करेंगे। मुरली आ रही है अभी एक बहुत अच्छी, उन दिनों बाबा की लहर भी बहुत चली। यज्ञ जब छोटा था तो मैं आपको बताऊं, जनवरी मास पूरा बाबा ने 73 में तपस्या मास घोषित किया और कहा सबको तपस्या करनी है, सब सेंटर वालों को मौन रखना है, बाबा इनाम देंगे, और दिए गए। तो बहुत अच्छी तपस्या चलती थी, उस तपस्या की बहुत जरूरत है, तो हम अपने को परिवर्तन करेंगे, अपने संकल्पों में परिवर्तन। ये भी तो पता होना चाहिए ना, किस में परिवर्तन करेंगे? बोल में परिवर्तन, बोल। आज भी बाबा ने क्या कहा, दूसरों को कैसे समझाओ? बड़ी ठंडाई से, बड़ी नम्रता से, बहुत प्यार से। कल अव्यक्त मूल्य थी, उसमें भी ये था, अथॉरिटी से समझाओ, सत्यता को अथॉरिटी से रखो, लेकिन निर्माणता, नम्रता, उसमें किसी को ऐसा न लगे इनको अभिमान है अपने ज्ञान का। तो ये चीजें हम सब सीखते हैं, नम्रता और अथॉरिटी का जीवन में बैलेंस रखना। तो हम देख लें, हम बोलते कैसे हैं, हमें फीलिंग कितनी आती है, मूड जल्दी बदलते हैं या हम एक रस मूड बनाना सीख गए हैं। सब कुछ बदलेगा, मौसम भी बदलती हैं, लेकिन हमारा मूड न बदले, ये हमें सीख लेनी है कला। हमें क्रोध न आए, हम उत्तेजित इरिटेट न होते रहें छोटी बातों में, इसके लिए हमें अच्छी साधनाओं की जरूरत है। पर पहली चीज होती है हमारा संकल्प। बहुत भाई बहनों ने किया, हम हाथ उठवाते हैं सभाओं में, अच्छी अच्छी हजार दो हजार की सभाएं जब होती हैं, तो क्रोध किस किस ने जीता, बहुत तो बहुत भाई बहने हाथ उठाते हैं, जीता हमने, किसने आधा भी जीत लिया। तो कैसे जीत लिया, देखो एक तो योग बल से होता है, दूसरा एक संकल्प कर लिया कि नहीं क्रोध बुरी चीज है, क्रोध से अशांति होती है, क्रोध अग्नि है, जलते रहे हैं, अब इसको बुझाना है। तो एक संकल्प किया कि अब क्रोध नहीं करेंगे, आधा खत्म हो जाता है। आप संकल्प करें मुझे पर चिंतन नहीं करना है, मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है, मुझे भगवान की बात माननी है, आधा खत्म हो जाएगा। बाकी ध्यान देंगे थोड़ा तो सब कुछ निकलता जाएगा। देखो बाबा की सहनशीलता पर कई बार मुरलियां चली, और उसमें एक सुंदर बात थी जो हमारे दिल में पहुंचती है। बाबा ने कहा ऐसा सोचो कि मुझे सहन इसलिए करना है क्योंकि सहन करने के लिए स्वयं भगवान ने कहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा। यही मधुबन वाला एक भाई, उससे अगले दिन ही मुझे मिला, मैं मुरली के बाद क्लास कराने आता था यहाँ हमेशा, जैसे मुरली चलती अगले दिन आता हूँ अभी भी, तो वो मिला, बड़ा खुश था। उससे पहले यही मुरली चली थी तो मुझे सुनाने लगा, देखो मैंने आज एक चीज पर विजय प्राप्त कर ली, एक भाई मेरे से खूब लड़ता रहा, बुरा बुरा बोलता रहा, पर मुझे कल की बात याद थी, तुम्हें सहन इसलिए करना है क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है, तो मैं सोचा मुझे तो भगवान की आज्ञा माननी है, मुझे गुस्सा आया ही नहीं तो लड़ाई हो जाती। कितना अच्छा संकल्प है। तो पहली चीज हमें संकल्पों में चेंज लानी है, किसी भी तरह की चेंज हमें संकल्पों से शुरू करनी होती है। संकल्प बदलते ही जीवन बदल जाता है, जीवन परिवर्तन लंबी चौड़ी बात भी नहीं, केवल संकल्प परिवर्तन है। ठीक बात है या नहीं, जीवन परिवर्तन और कुछ नहीं, क्या है बोलो, संकल्प परिवर्तन है। तो अपने स्वमान को बहुत बढ़ाएंगे, एक इम्पोर्टेंट चीज। देखिए किसी व्यक्ति को बहुत फीलिंग होती है, कोई व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा होता है, संगठन में एक दो आदमी ऐसा भी होता है जिसको सब छेड़ते हैं, मजा लेते हैं उसको छेड़ने में, हर जगह मिलेगा ऐसा। अगर 10-15 लोग इकट्ठे रहते हैं तो एक ऐसा होगा जिसे सब छेड़ेंगे, मजा आएगा लोगों को उसे छेड़ने में, वो गुस्सा करेगा लोगों को, मजा आएगा। ऐसा ही एक केस मेरे सामने आया, मैंने उससे पूछा तुमने कभी सोचा कि तुम्हें ये सब लोग क्यों तंग करते हैं, वो कहता सब मुझे तंग करते हैं, सब मेरे लिए उल्टा सुलटा बोलते हैं, मेरी स्थिति बिगड़ जाती है। तो मैं देखता रहता हूँ उसे, मैंने उसे पूछा क्यों सब तुम्हें ही तंग करते हैं, क्या बात है औरों को नहीं करते, जितने भी खराब लोग हैं वो सब तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं क्यों। अब उसको तो समझ में नहीं आता था क्यों। असली बात क्या है, स्वमान की बहुत कमी। स्वमान को हमें बहुत बढ़ाना है। स्वमान के बारे में आप एक छोटी सी बात याद रखेंगे और बड़ी राज की है, इस बात को अगर बाबा के बच्चे ठीक से समझ ले, छोटी सी बात है, आपने हजारों बार सुनी है, अब मैं सुना रहा हूं आपको, इस बात को जो समझ ले उसे जीवन को परिवर्तन करने में मेहनत नहीं पड़ेगी। और वो बात है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। रिपीट करो जरा, जैसी, इसको सरल भाषा में कहते हैं जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अब दुनिया में लोगों को ये पता नहीं कि क्या सोचना चाहिए और क्या बनना है। अब दुनिया के लोगों की ओर आप नजर डालो, आप देखो अपने परिवारों में, आपके संबंधों में, आपके समाज में, किसी को इच्छा होती है क्या कि मुझे अपने को बदलना है? देखा दुनिया में कोई जो कहे मुझे अपने को बदलना है? नहीं होती, किसी को पता ही नहीं कि बदलना भी होता है क्या। गुस्सा आ रहा तो आ रहा, ठीक आ रहा है, गुस्सा काटना ही पड़ेगा, लोग ये सोचते हैं। अभी हमारे यहाँ बिजनेस विंग का प्रोग्राम था ना, कई लोग मिले, मैंने उन्हें एक संकल्प दिया था कि आप अपने परिवारों में, घरों में, दुनिया में सारा दिन अपने काम धंधे के बारे में ही सोचते हो, अब यहाँ 3 दिन आकर अपने बारे में सोचना, आपको अपने बारे में रोशनी मिलेगी। यहाँ तो कईयों ने मुझे बताया कि हमें इस बात ने बहुत सुख दिया है, पहली बार जीवन में हमने अपने बारे में सोचा। एक व्यक्ति जो बुजुर्ग हो गया 65 साल का, वो मुझे बता रहा कि मैंने पहली बार जीवन में अपने बारे में सोचा कि हमें कुछ करना है, हमें अच्छा बनना है, हमें इस कमी को निकालना है, हम बहुत निगेटिव सोचते हैं, हमें इसको खत्म करना है। कहाँ सोचते हैं लोग? बाबा के बच्चे ही हैं जो अपने लिए सोच रहे हैं। बाबा ने रोज क्या किया हम सबको, मुरली क्या है, मुरली को एक दूसरी दृष्टि से आप देखेंगे, बाबा रोज हमें स्मृतियां दिलाता है। ध्यान से देखना मुरली को, रोज बहुत कुछ याद दिलाता है, तुम ऐसे थे। लक्ष्मीनारायण का चित्र बाबा के सामने जब आया पहली बार बना, तो ब्रह्मा बाबा को तो नसाई चढ़ गया था सदा के लिए। सबको कहते थे तुम इनके कुल के हो, ये चित्र अपने सामने रखो, जेब में डाल दो ये चित्र। छोटे छोटे तब चित्र बने थे, बैज बना था, लक्ष्मीनारायण था, इसको देखते रहो। तो बाबा रोज हमें स्मृति तो दिलाते हैं, तो जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी ही, बोलो सभी एक बात, आज मेरा संकल्प है कि ये बात सबके अंदर पहुंच जाए कि स्थिति को बनाना कठिन काम नहीं है, हमारी स्मृति हमारी स्थिति को बना देगी। तो 5 स्मृति निकालने, बहुत स्मृतियां हैं, 100 कम से कम, उनमें से 5-7 निकाल लें जिससे हमारी स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी। पहले मैं माताओं को एक बात कहूं जिसकी मैंने आजकल अभ्यास कराना शुरू किया है माताओं से, अपने अपने घरों में रहते हुए आप सब सोचेंगे मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। थोड़ी हायर लेवल की स्मृति है, मैं इस घर की माता हूं, इस घर की मालिक हूं, ये मेरा परिवार है, ये तो अब तक सोचते आए, ये तो है ही, इसमें कोई और बात है नहीं, लेकिन मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, ये स्मृति रखते ही स्थिति में क्या क्या आ जाएगा, अब सोच लो। घर आपका मंदिर है और आप हुई घर की इष्ट देवी, क्या क्या आ जाएगा? माताओं को भी बोलना, ठीक बोल रहे, बोलो। वायुमंडल बदल जाएगा, घर का मंदिर जैसा होने लगेगा, और बोलो, बहुत अच्छी बात बताई, बाकी सब भक्त नजर आएंगे। तो भक्तों को देना होता है, आप दाता बन जाएंगे। अब माताओं को ही बोलना क्या क्या होगा, रहम दिल बन जाएंगे, कल्याणकारी बन जाएंगे, सहयोगी बन जाएंगे, क्रोध रहेगा नहीं तो ज्वाला देवी बन जाएंगे, क्रोध तो नहीं रहेगा ना, क्रोध नहीं तो रहेगा ही नहीं, तो स्मृति से स्थिति बन जाएगी ना, प्योरिटी बहुत ऊंची उठने लगेगी, आप ही हो जाएगा सब काम। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, भाई क्या सोचेंगे, इष्ट देवता हूँ, मैं इस घर में पूर्वज हूँ या महान आत्मा हूँ, तो महानताएं आ जाएंगी, पूर्वज की स्मृति से बड़ापन आ जाएगा, बड़ापन, बड़े हो जाएंगे, बड़े होने का अर्थ है छोटे विचार खत्म, छोटी भावनाएं खत्म, स्वार्थ खत्म, मैं जो छोटापन है वो खत्म होने लगेगा। इन स्मृतियों से स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। दूसरी स्मृति बताओ, बोलो कोच वाले भाई बताएं, चारों कौन सी स्मृति रखे, मैं कौन हूं, बोलो ना, मैं महावीर हूं, यही अच्छा ये शब्द है, स्मृति आ जाए मैं महावीर हूं, स्मृति आ जाए मैंने कल्प कल्प इस माया को जीता है, तो क्या स्थिति बन जाएगी, जीतने वाली स्थिति, सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएंगी, माया को जीतने का बल आ जाएगा, याद दिला दिया तुमने अनेक बार माया को जीता है, अनगिनत बार कहने से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, तुमने हजारों बार माया को जीता है, तो फिर से जीतने की ताकत आ जाएगी, तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो, तो देव संस्कार जगने लगेंगे। ये जो हमारी स्मृतियां हैं ये बहुत बड़ी चीज है। ब्रह्मा बाबा के लिए आप सबने सुना होगा, नहीं तो सुन लें, बाबा के पुरुषार्थ में जहाँ योग तपस्या बहुत ज्यादा थी, जहाँ शरीरीपन का अभ्यास बहुत ज्यादा था, स्वमान बहुत ज्यादा था, वहीं भविष्य का नशा भी बहुत ज्यादा था। ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ में, मामा के पुरुषार्थ में, भविष्य का बहुत नशा। बाबा को तो रहता था कि बूढ़ा शरीर छोड़ा और श्री कृष्ण का छोटा शरीर लिया, बस जैसे ये छोड़ा वो लिया, ये वस्त्र है उतारा खूंटी पे टंगा है, बाबा ने अव्यक्त मुरली इस तरह सुनाई, खूंटी पर टंगी है तुम्हारी दो ड्रेस, फरिश्ते की ड्रेस, देवताई ड्रेस, कभी देवताई ड्रेस पहन ली, कभी फरिश्ते की ड्रेस पहन ली, ये बहुत अच्छा अभ्यास है, ये हमारी बहुत अच्छी साधना है, शरीरी होने की भी और भविष्य के नशे की भी। तो क्या होगा, भविष्य का नशा होगा, तो अब सोचो देखो, ब्रह्मा बाबा को सामने लाओ, ब्रह्मा बाबा को भविष्य का बहुत नशा था, मैं श्री कृष्ण बनूंगा, मिचनू कहते हैं सिंधी में, छोटा बच्चा बनूंगा, श्री कृष्ण बनूंगा, तो क्या होता था पता, श्री कृष्ण के सारे हाव भाव चेहरे पर अंदर आ जाते थे, जिन्होंने बाबा को देखा जो बहुत समीप थे, सबसे ज्यादा समीप थी दीदी मन मोहिनी, वो सुनाती थी कभी कभी कि बस बाबा दिखाई नहीं देता था कि बूढ़ा है, श्री कृष्ण है छोटा सा, बिल्कुल वही स्वरूप दिखता था, बन जाता था। तो जिस भविष्य की स्मृति में हम रहेंगे वही हमारा स्वरूप बनता जाएगा और उसकी सारी क्वालिटी, उसके सारे गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। तो जब गुण आएंगे तो ये सब चीजें अवगुण हटते जाएंगे, क्योंकि ये अवगुण सारे आत्मा की कमजोरी की निशानी है। जब आत्मा बहुत कमजोर है तो वो दूसरों की ओर प्यासी नजरों से देखती है, उसके मन में कामनाएं ज्यादा रहती हैं। जब मनुष्य बहुत कमजोर है तो उसे फीलिंग बहुत ज्यादा आती है। आत्मा बहुत कमजोर है तो मूड तेजी से बदलते रहते हैं। अनेक कमजोरियां, अनेक अवगुण आत्मा क्योंकि निर्बल है इसलिए हैं जीवन में। योग बल से जैसे जैसे हम आत्मा को पावरफुल बनाते जाएंगे तो अनेक कमियां आपे ही समाप्त होंगी। जैसे बाबा की मुरली से एक उदाहरण है, तम प्रधान स्थिति है किसी आत्मा की। अब वो योग अभ्यास प्रारंभ करती है, अब वो रजो में पहुंचती है, तो रजो स्थिति में जो गुण थे वो सब जागृत हो गए। अब फिर वो सतो में पहुंचती है तो सतो स्थिति के जो गुण थे वो जीवन में आने लगे, और जैसे सतो प्रधान पहुंचेगी तो सर्वगुण संपन्न होने लगेगी, शक्तियां आ जाएंगी, संपूर्ण प्योरिटी आ जाएगी, अंग अंग शीतल हो जाएंगे। तो जितना जितना हम योग बढ़ाते हैं यानी बैटरी हमारी चार्ज होने लगती है, परसेंटेज बढ़ती है, उतने उतने ये सारे गुण हमारे जीवन में आते जाते हैं। तो हमें सोचना है, अब दो बातों पर ही हम रहेंगे, स्मृतियां और कौन कौन सी रखें, और मुझे अपने अंदर से कौन सी कमी निकालनी है। केवल क्लास नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल सोचेंगे, मुझे अपने अंदर से ये कमी निकालनी है। मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई मेरी बात काट दे तो मुझे सहनी नहीं होता, कोई मेरी बात न सुने तो मैं परेशान हो जाता हूँ, क्या होता है, उसे चेंज करना है, अपनी स्थिति को धैर्यवत बनाना है। सरल चित्त, धैर्यवत, एक ऊंचे लक्ष्य की ओर हमें चलना है। जब हम ऊंचे लक्ष्य की ओर चलते हैं तो ये बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। आपके घरों में आपके बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, कई माताओं ने भाइयों ने देखा होगा, बच्चे मोबाइल भी नहीं सुनते, मुझे बच्चे बताते हैं। हाईस्कूल में एक बच्चा, बहुत अच्छे नंबर उसके आए, मेरे से मिलाने लाई उसकी माँ, मैंने पूछा तू मोबाइल पे कितना रहते हो, रखा ही नहीं है मोबाइल। देखो ऐसे बच्चे भी कितने अच्छे हैं, सभी बच्चे मोबाइल पे नहीं रहते। 12वीं क्लास के बच्चे जिनको बहुत हाई परसेंटेज लानी है मोबाइल को छोड़ देते हैं, नहीं इसमें नहीं रहना है। क्यों छोड़ देते हैं, उत्तर तो मैंने दे दिया, लक्ष्य क्लियर है और बहुत महान है, बड़ा है और यहाँ तक हमें पहुंचना है, क्योंकि 12वीं के वो नंबर आगे क्या उनका मार्ग सरल कर सकते हैं ना, मेडिकल में जाना है, हम 95% आ गए तो सीधा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, फीस भी कम होगी, डोनेशन वोनेशन का चक्कर भी नहीं, घर साधारण है गरीब है तो भी डॉक्टर बन जाएंगे, IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे मार्क्स होंगे। तो एक लक्ष्य जब ऊंचा होता है तो मनुष्य की बहुत सारी छोटी छोटी बातें पीछे छूट जाती हैं। लक्ष्य निश्चित करें, क्या है लक्ष्य बोलो, नहीं लक्ष्मीनारायण बनना नहीं, मैं कुछ प्रैक्टिकल लक्ष्य पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल लक्ष्य। लक्ष्य ऐसा होता है जैसे मुझे योग इतना रोज करना है, मुझे सकास देने की सेवा करनी है, मुझे अपने चित्त को शांत रखना है, मुझे बहुत खुशी में रहना है, या मुझे संतुष्ट आत्मा बनना है, या मुझे ये स्वमान बहुत अभ्यास में लाने हैं, ये लक्ष्य, प्रैक्टिकल लक्ष्य। लक्ष्मीनारायण बनना ये तो कहने तक होता है बस, कहा और भूल गए, उसके आगे तो कुछ नहीं होता ना, कहा और भूल गए। तो लग सोचा होगा तो परचिंतन में जाएंगे, लगेगा इनकी जो है वो जाने हम क्यों इस लफड़े में पड़े। दादी जान की शिकायत करती थी जब बाबा व्यक्त हुए, मुझे वो बात बहुत काम आई, अवगुण इनका मुसीबत हमारी। अरे इनका अवगुण वो जाने, हम क्यों चिंतन करके अपनी स्थिति बिगाड़ रहे हैं भाई, छोड़ो इसको। बहुत अच्छी लगी ये बात। दूसरा स्लोगन होता था बहुत अच्छा है, सब जान की दादी सिखाती थी, त्रुटि देखी, त्रुटि माना दूसरे का अवगुण, त्रुटि देखी तपस्या भंग हुई। बड़ी प्रैक्टिकल बात है, दूसरे के अवगुणों पर नजर जाते ही हमारा योग टूट जाता है, खुशी भी नष्ट हो जाती है। तो हम एक ऊंचा लक्ष्य लेकर जीवन में चलें, और ऊंचे लक्ष्य के लिए स्वयं से बात करें, अभी करेंगे। बाबा के पास आए हैं तो सब कुछ लेकर ही जाएंगे, है अच्छा संकल्प। बाबा के पास आए हैं तो खाली नहीं जाएंगे, बहुत लोग खाली जाएंगे, हम नहीं, सब कुछ लेकर जाएंगे उनसे। ये संकल्प बहुत सुंदर है। मुश्किल से प्रभु मिलन हुआ है, दूसरा संकल्प करें, मुश्किल से हुआ है ना, कितना ढूंढा, कितनी भक्ति की, त्याग किए। हम तो अभी देख कर आए, मथुरा गए थे तो गोवर्धन पर्वत की चक्कर लगाते हैं लोग, परिक्रमा करते हैं, तो कितनी माताएं उसमें, माताएं ज्यादा थी, लेट के जा रही हैं। वो रखा हुआ छोटा सा गद्दा सा, 2 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा, उसको बिछाया, उस पे लेटा, हाथ आगे फैलाए, पत्थर रखा वहां, फिर उसके आगे गद्दा रखा, फिर उस पर लेटे, हाथ फैलाए, फिर पत्थर रखा। मैं देख रहा था उन्हें, रास्ते में कितने ही मिल गए, 25 तो मिल गए होंगे, ऐसी माताएं ज्यादा, भाई 2-4 ही थे। क्या देखो ये लोग कितनी मेहनत कर रहे। मैंने पूछा, वो जो हमें ले चल रहा था, ई रिक्शा में ही जा रहे थे क्योंकि गाड़ी नहीं जाने दे रहे थे, हमने उनसे पूछा इनको कितने दिन लग जाते हैं परिक्रमा करने में। अब सोचो आप ऐसे 1 किलोमीटर ही रोज चल पाएंगे ना, कितनी मेहनत, छिल गई छाती किसी की, किसी का हाथ दुखने लगा है, घड़ी घड़ी उठ रहे फिर लेट रहे, मोटी मोटी माताएं भी घड़ी घड़ी उठ रही फिर बैठ के धीरे से लेट रहे। मैं क्या देखो, और हम लोग देखो सोफों पे बैठे फर्स्ट क्लास, न ठंडी न गर्मी, ठंडी होती है तो यहाँ हीटर चला दिए जाते हैं, गर्मी होती है तो एसी चला दिया जाता है, और मिल रहे हैं भगवान से। सोचें अपना अपना भाग्य, कैसी सहज प्राप्ति बाबा ने करा दी। सहज प्राप्ति के बाद हम सर्वस्व प्राप्ति कर लें, ये हमें चिंतन करना है। ये सहज प्राप्ति हमें अलबेले ना बना दे, कईयों को बना दिया है, बाबा से मिल लिए बस हो गया ना, भगवान मिल गया पूरा हो गया, आगे क्या करना है, कुछ नहीं। कई लोग बाबा से मिलने आते थे नीचे, भाई 8-10 मास पवित्र है, बस मिल लिए ना बाबा पूरा हो गया, फिर वही दुनिया में भगवान से मिल लिए ना। ये बहुत कम बुद्धि वालों की पहचान है। हमें तो बाबा से सब कुछ प्राप्त करना है, और इतना प्राप्त कर लेना है जो द्वापर युग से भी किसी भी जन्म में कोई कमी न पड़े। चिंतन करो सभी। तो जब हमें ये प्राप्त करना है तो ये सब चीजें छोड़ देनी है। ये है बहुत सुंदर चिंतन। फिर से आए, श्रेष्ठ स्मृतियों में हमें रहना है। एक बहुत सुंदर स्मृति जो रोज बाबा ने हमें दिलाई है और वो अभी आ नहीं रही है। समय की गति ऐसी हो गई कि वो रोज दिलाता है मुरलियम बाबा और वो आ नहीं रही है। कौन सी है वो? 5000 साल का खेल पूरा हुआ, अब तुम्हें घर वापिस जाना है। आई है स्मृति या नहीं? सब सोचते हैं जब चलेंगे चलेंगे, सभी चलेंगे हमें जाना है, इसमें क्या हुआ, जाना है ठीक है, ये नहीं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम सुदर्शन चक्रधारी बने कैसे? 5000 साल चक्र लगाकर हम यहाँ पहुंचे हैं, भगवान आ गया हमें ले जाने के लिए, और खाली नहीं ले जाएगा, हमें मुक्त करा के, सभी पापों से मुक्त करा के, हमें भरपूर करके अपने खजानों से फिर साथ ले जाएगा। तो जाने की स्मृति होगी तो यहाँ से अनासक्त हो जाएंगे, ये स्थिति बन जाएगी। यहाँ से छोटी छोटी बातों में, जिसमें आजकल संसार उलझ गया है, ब्राह्मण संसार भी उलझ गया है, किसमें? फोन में। माताएं कम उलझी होंगी पर भाई लोग बहुत उलझ गए। अच्छी चीज भी है फोन, नेट बहुत अच्छी है। गांव की माताएं आती हैं, देखा सेल्फी ले रही, भाई जी सेल्फी लेंगी। गांव की बूढ़ी माताओं का सेल्फी एक्सपर्ट हो, हाँ सेल्फी लेना सीख लिया है, अच्छी बात भी है। कहा आपकी नेट पे हम बहुत कहा सुनते हैं। मैंने कहा नेट सीख गई क्या? हाँ बच्चों ने सिखा दिया, नेट खोलना सीख गए। देखो माताएं थोड़ी पढ़ी लिखी तो फायदा भी हुआ बहुत, बाबा का ज्ञान सारे संसार में फैलाने में। ये विज्ञान के साधन जो अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन आए हैं, ये बहुत सफल भी हुए हैं। मुरली पहले मिस होती थी, अभी कहीं भी सुन लेते हैं, कार में जा रहे सुन लिया, बाइक पे जा रहे सुनते चले गए, ये अच्छा यूज। लेकिन इसका ही खराब यूज अगर करने लगे तो ये सब कुछ नष्ट करने वाला। तो हम सभी को बाबा ने बहुत स्मृति दिलाई, 5 चुन लेना, देव कुल के हैं हम सभी। जरा इसको गहरी फीलिंग में ला कर देखो, हम लक्ष्मी नारायण के कुल के हैं, हम श्री कृष्ण के कुल के हैं, हम उनके वंशज हैं। क्या क्या हो जाएगा हमारे अंदर? खुशी भी होगी और उनके सारे संस्कार हमारे अंदर आने लगेंगे, बुराई छूटने लगेगी। कि जो लक्ष्मी नारायण के वंशज हैं, जो श्री कृष्ण के वंशज हैं, वो सिगरेट पान थोड़ा ही खाएंगे। देखा कभी सिगरेट देवताओं को? तो छूट जाएगा ना व्यसन, सब सब व्यसन छूट। तो एक एक स्मृति हमारी स्थिति को महान बनाएगी, विकारों से हमें मुक्त करेगी, मैंपन भी छूटेगा, अभिमान भी छूटेगा, चित्त भी शांत होगा, साक्षी भाव भी आ जाएगा। और जो समय बदल रहा है अब तेजी से, इस संसार में परेशानियां तो बढ़ती जा रही हैं, और सभी के हिसाब किताब चुकते होंगे तो परेशानियां और बढ़ेंगी। ये तो ड्रामा का विधान ही है ना ऐसा। तो हमें श्रेष्ठ स्मृतियों में रहकर अपने साक्षी भाव को बढ़ाते चलना है, और विशेष रूप से सकास बहुत देनी है। कुछ आपको ना आए, एक संकल्प करना, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है, शक्तियां फैल रही, शांति फैल रही, बस इसे सकास मिलती रहेगी सबको। आधा आधा मिनट भी, जब 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है ना, उसमें ये अभ्यास कर लो तो 1 मिनट भी बहुत सुख देने वाला हो जाएगा। तो सभी ध्यान देंगे, हमें अपनी कमियों को निकाल फेंकना है और श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना है। ओम शांति। प्रभु